अच्छा, एक और चीज़ आप देखें, हम रैंडम थोड़ी सी बातें इस पे कर रहे हैं, जैसा कि आप भी कुछ शेयर करना चाहें तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। पहले दौर में क्या होता था, अभी छोटी सी उम्र होती थी लड़के की भी और लड़की की, माँ बाप पकड़ पकड़ के शादी कर देते थे। अब जब वो लड़की घर में आती थी ससुराल के, तो होता क्या था कि बाद जब वो उसके नए नए शौहर को अपने बाप से झाड़ भी पड़ रही होती थी, और उसने अब कहीं बाहर जाना या जेब खर्च तक बाज अपने अब्बा से लेते थे। अब जब एक लड़का जो खुद अपने बाप से कुछ ले रहा है, तो वो लड़की डेफिनेटली उस ससुर की इज्जत करेगी ना, क्योंकि वो देख रही है कि मेरा तो अपना शौहर इससे ले रहा है। तो वो लड़की ना चाहते हुए भी ससुराल के करीब हो जाती थी। वो अम्मा से पूछ के कुछ काम कर रहा है, ला रहा है। छोटी उम्र के बच्चे बच्चियां बहुत जल्दी घुल मिल जाते थे। अब क्या होता है कि हम कहते नहीं, इसको मैं शादी नहीं करूंगी जब तक अपने पाँव पे ना खड़ा हो जाए, इसका अपना घर हो जाए, वो जाए। फिर हम चाहें कि हमारी बहू हमारी सारी खिदमत करे, तो नहीं हो सकता। इंसान जिसके आगे दबता है ना, उसी से लेता है। तो कमी बेशी दोनों तरफ होती है। हर इंसान को इस्लाम को सामने रखते हुए इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि इस रिश्ते को खूबसूरत कैसे किया जाए। हम अपने लिए इसमें से अमल की बात ले सकते हैं। अपनी उम्र को देखें, किस दौर में हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या आपका स्टेटस है। आज इतनी बात में से ये ले लें कि मैंने अच्छी बेटी बनना है और मैंने अच्छी माँ बनना है। अगर आपके माँ बाप अभी जिंदा हैं तो खुशकिस्मत है, अभी आपके पास वो नेकियाँ कमाने के मौके मौजूद हैं जो शायद कुछ अरसे के बाद नहीं रहेंगे। ये वो छाँव जो हमेशा जिंदसर में नहीं रहती, और ये कुदरती तरीके, और अल्लाह ऐसे ही रखे कि माँ बाप की ज़िंदगी में, मतलब औलाद की ज़िंदगी में माँ बाप जाए। ये तो और दुख की बात है कि बच्चे जवान हैं और माँ बाप बूढ़े हैं और बच्चों का इंतकाल हो जाए। फितरत का तरीका है ना, तो इसकी कदर करनी है। दूसरी तरफ अगर अपने बच्चों को हम देखें, जिस एज के भी बच्चे हैं, उनके जज्बात को समझना, उनकी ज़हनी इस तरह की तरबियत करना कि वो अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन फैसले करें। हमारी माएँ यानी उम्महातुल मोमिनीन को ले लीजिए, सहाबियात को ले लीजिए, वो बच्चों की तरबियत में बहुत अच्छी थी। उन औरतों का पूरा वक्त ही चूँकि बच्चों के लिए फोकस्ड होता था, तो वो उनकी आधी से ज़्यादा तरबियत तो स्कूल जाने से पहले कर चुकी होती थी। इसलिए आपको कोई ऐसा केस नहीं दिखेगा। आज आप एक से दूसरे बंदे से बात करें ना, किसी औलाद के गम का शिकार है। ऊपर से चेहरे चमकते हैं, अंदर से रोग लगे हुए हैं, खटके हुए, अंदर से टूटे पड़े हुए हैं। किसी को बेटे का गम, किसी को बेटी का गम, किसी का ये मसला, किसी का वो मसला। वजह क्या है कि हमने उनको दीन से दूर किया। जब हमारी तरबियत दीन के मुताबिक होगी, अल्लाह ताला हमारे बच्चों के दिल में हमारी मोहब्बत डालेगा। हम उनको अल्लाह से जोड़ेंगे, वो हमसे जुड़ेंगे, और अगर हम उनको अल्लाह से काटेंगे, वो हमसे भी कट गए। अब इसके बाद एक बिगड़ी हुई औलाद का नक्शा, सिर्फ आयात से बात समझ आ जाती है। अल्लाह सुबहाना ताला एक दूसरा किरदार पेश करते हैं। वल्लसी काल अली वालिदई ही उफिल्लकुमा, और जिस शख्स ने अपने वालदेन से कहा, उफ, तंग कर दिया तुमने मुझको। कैसे? अतईदानिनी अन उखरजा वक़द खलतिल कुरून मिन कबली, जिसने अपने माँ बाप से कहा कि क्या तुम मुझे खौफ दिलाते हो कि मैं मरने के बाद फिर कब्र से निकाला जाऊँगा, हालांकि मुझसे पहले बहुत सी नस्लें गुजर चुकी हैं, यानी उनमें से तो कोई उठ के आया नहीं। अब ये कौन सा बच्चा जो माँ बाप का गुस्ताख है, उफ कहने वाला, तंग कर दिया तुमने, सता दिया मुझके, हर वक्त यही कहते हो मैं मरने के बाद जिंदा किया जाऊंगा, जबकि मैंने तो इतनी नस्लों को पीछे से उठते हुए नहीं देखा। ये आयत मक्की दौर के आखिर में नाजिल हुई थी। कुफर और शिर्क की जंग कशमकश में दाखिल हो चुकी थी। घर घर में ये औलाद और माँ बाप के झगड़े थे। कोई मुसलमान हो रहा था तो कोई अभी कुफर पे था। तो कुछ लोग ऐसे थे जो अपने माँ बाप की नेकी की दावतों पे उफ़ के लफ्ज़ बोलते थे, और लफ्ज़ उफ़ भी अजीब लफ्ज़ है। सूरत बनी इसराइल में इसके बारे में अल्लाह ताला ने वाज़ह तौर पर हमें कहा कि उनके लिए उफ़ भी ना कहो। और उफ़ के नापसंदीदगी या नाराज़गी के इजहार का सबसे हल्का दर्जा। देखिए आप, उफ़, एक मोमबत्ती जलाएं और उसके सामने कहें ज़रा उफ़, हो सकता है इस उफ़ से वो मोमबत्ती बुझ जाए। इसी तरह माँ बाप के दिल के चिराग बुझ जाते हैं जब औलाद माँ बाप के आगे गरजने लगती है। यहाँ एटिकेट सिखाए जा रहे हैं कि माँ बाप के साथ कैसे बोलना है, कैसे बात करना है। सूरह बनी इसराइल में बैठने का तरीका सिखाया कि वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुर रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अपने माँ बाप के सामने अपने जिल्लत के बाजू झुका दो, आजी से बैठो, झुक के बिठाओ, बैठ के दिखाया, जैसे परिंदा उड़ने से पहले अपने पर समेटता है ना, का इस तरह अपने माँ बाप के सामने सिमटो अगर तुम बुलंदियों में जाना चाहते हो, अगर तुम इज्जत में जाते हो। लेकिन जो औलाद माँ बाप की नाफरमान हो जाती है, उसके बारे में यहाँ कहा गया कि वो अपने माँ बाप की इन बातों को सुनकर आगे से नाक मुंह चढ़ाते हैं और कहते हैं कोई मरने के बाद नहीं उठना, बल्कि क्या है कि ये झूठ बात है, कोई हमसे पहले ना आया ना आएगा। अल्लाह ताला कहते हैं वहुमा यस्तगीसानिल्लाही, वहुमा यस्तगीसानिल्लाह वैलक, और वो दोनों उसको कहते हैं, दुहाई देते हैं, अरे बदनसीब मान जा कि अल्लाह का वादा सच्चा है। मगर वो ये कहता है ये सब तो अगले लोगों की कहानी है, ये पुराने लोगों की कहानी है। उलाइकल्लज़ीना हक्का अलैहिमुल कौलु फी उममिन कद खलत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्नि वल इंस इन्नहुम कानू खासिरीन। ये वो लोग हैं जिन पर अज़ाब का फ़ैसला चिस्मा हो चुका, इनसे पहले जिन्नों और इंसानों के जो गिरोह इसी तरह के हो गए, ये भी उन्हीं में शामिल हो जाता है, और बेशक ये दोनों घाटे में रहने वाले हैं। यानी एक खुशकिस्मत बच्चा था जिसने माँ बाप की इज्जत की कदर की, और एक बिगड़ा हुआ बच्चा। आज अगर औलादें बिगड़ी भी दिखती हैं तो उसकी वजह क्या है, सोचने की बात है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास एक शख्स अपने जवान बच्चे को लेकर आया, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मेरा बच्चा बड़ा गुस्ताख है, मेरी बात नहीं मानता, इसको कुछ समझाएं। इससे पहले कि हज़रत उमर उस बच्चे से कोई बात करते, उस लड़के ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप मेरे एक सवाल का बस जवाब दे दें, फिर आप जो कुछ मुझे कहेंगे मैं मानूंगा। कहा क्या? कहा ये बताइए कि बेटा होने के नाते मेरा क्या हक था मेरे बाप के ऊपर? तो हज़रत उमर ने क्या कहा कि तेरा पहला हक क्या था? सोचिए, हर एक अपने दिल में कोई सोच ले। जी, आप बताइए, आप बताना चाह रहे हैं कुछ? अच्छा पाले, एहसान ना जतलाए, आप क्या सोच रहे हैं? अच्छी तरबियत करे, आप क्या सोचते हैं? आप तो बहुत दूर चले गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि तेरा पहला हक तेरे बाप के ज़िम्मे क्या था कि तुझे एक अच्छी माँ देता। क्या रिश्ता करते वक्त हम कभी सोचते हैं कि ये औरत कल के बच्चों की माँ होगी और ये लड़का कल मेरे आने वाले बच्चों का बाप होगा? फिर जो आंखों के आंसू बहेंगे, जो रोएंगे, उससे क्या मिलेगा? आज हमारे रिश्ते करने के अंदाज़ कितने फ़र्क हैं, हम हुस्न देखते हैं या दौलत देखते हैं, ये दोनों अच्छी तरबियत में काम नहीं आती। कहने लगा दूसरा हुक्म क्या, दूसरा क्या काम था? कहने लगे कि तेरा दूसरा आगे तक तेरा अच्छा नाम रखता, फिर तीसरा ये था कि तेरी अच्छी तरबियत करता। हज़रत उमर की इस बात पे बच्चे ने फरमाया कि फिर मेरी बात सुन लें कि मेरे बाप ने मेरे ये तीनों ही हक नहीं दिए। क्यों? कहने लगा कि मेरे बाप ने एक मुशरिक औरत से शादी की, मजूसी, बेदीन से कह लें, जो खुद नहीं दीन जानता वो आपको कल क्या देगा, और मेरी माँ चूँकि मुशरिक थी उसने मेरा नाम जवाला रखा, नाम भी नहीं अच्छा रखा, जवाला, ये जो जाले लग बेकार बेमकसद चीज़ थी, और मेरी माँ ने मेरी तरबियत अच्छी नहीं की। तो उस पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ऐ शख्स इस बच्चे को ले जा, कसूर इसका नहीं तेरा है। तो आज हम सब देखें, हम अपने रिश्ते ढूंढ रहे हैं या हम अपने लिए कोई लड़की लड़का पसंद करते हैं, क्या ये चीज़ हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे होती है कि मुझे उस शख्स से शादी करनी है जो कल मेरे लिए एक अच्छा दीनदार शौहर हो और कल मेरे बच्चों का अच्छा बाप बने? हमने सारी ज़िंदगी ऐसे थोड़ी रहना है, हर दिन तो हमने बड़े ही होना है ना, और शादी होगी तो बच्चे भी तो होंगे। कभी आप सोचिए कि जिस बंदे को खुद अल्लाह की पहचान नहीं होगी वो दूसरे को कहाँ से दिलाएगा? ये जज्बात के फैसले हैं। आज ये भी एक अजीबोगरीब कल्चर चल पड़ा कि हम सिर्फ पसंद के लफ्ज़ को शादी की बहुत बड़ी वजह समझते हैं। हालांकि आप देखिए पसंद नापसंद बदलती है कि नहीं, आप इसको देखना चाहें ना, आप अपनी अलमारी में रखे हुए 2 साल पुराने कपड़े देखिए। एक वो वक्त था कि जब आप अपना वो जोड़ा बनाने के लिए रो रहे थे कि अम्मी ये मुझे जोड़ा ले दो, और आज आप कहते हैं अब मैं ये पहनूँ, अब तो ये पुराना हो गया, अब ये छोटा हो गया, अब ये बड़ा हो गया। पसंद तो बहुत जल्दी बदल जाती है, सिर्फ पसंद की वजह से अगर आप किसी चीज़ को आगे लेके आते हैं, कल पसंद बदल गई तो क्या करेंगे, और कल कोई और पसंद आ गया तो क्या करेंगे? शादी बहुत मजबूत रिश्ता होता है, इतनी कच्ची बुनियाद पे इस रिश्ते को नहीं निभाना। आज वेस्ट ने यहाँ ठोकर खाई, वो कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, हाँ पहली नज़र में मोहब्बत हो गई और फिर दूसरी नज़र में तलाक हो जाती है अगर शादी हो जाए बीच में तो। लिविंग टुगेदर का कल्चर क्या है? मुझे हैरत होती है कि हम जिस फिज़ा में सांस लेते हैं उसके जर्म्स कितने हम महसूस करते हैं। एक रिपोर्ट कभी मैंने पढ़ के सुनाई थी कहीं कि 20 साल की उम्र तक पहुंचने में एक अमेरिकन लड़की 3 से 4 पार्टनर बदल चुकी होती है। इतनी चोटें खा के फिर कहीं जाके कोई उसको अपनी पसंद का लड़का मिलेगा। इस्लाम हमें क्या कहता है कि तुम जब इस्लाम की छाँव में आते हो असल खूबसूरत ज़िंदगी तुम्हें वहाँ मिलेगी। और यकीन करिए जहाँ आपके जिस रिश्ते के साथ इस्लाम का लफ्ज़ लग जाएगा ना आप समझ लें कि ये प्योर है, बाकी सब इमिटेशन है, प्योर गोल्डन है। आप भद्दे से भद्दे डिज़ाइन का भी सोना खरीद लेना, आपने कभी नुकसान नहीं किया। आज अगर वो 100 का है तो आज से 5 साल पहले वो 500 का हो जाएगा। नई डिज़ाइन पसंद आया ढाल के फिर बना लीजिए। लेकिन अगर आपने कोई झूठा सोना खरीद लिया, चाहे उसकी डिज़ाइनिंग बड़ी खूबसूरत है, कल मार्केट में जाएंगे बिकेगा क्या? सच्चे रिश्ते कौन से होते हैं जो अल्लाह के दीन के मुताबिक होते हैं? इसलिए इन मामलात में बहुत संजीदा होना चाहिए। और आप में से कुछ ख़वातीन ऐसी बैठी हैं जो हो सकता है अभी इस उम्र में अपने बेटों के रिश्ते ढूंढ रही हैं। हम जब बेटे का रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो क्या कहते हैं? परी चाहिए। अल्लाह कहता है तुम्हारे लिए औरतें रखी हैं मर्दों के लिए, मर्दों के लिए औरतें रखी हैं। माँ कहती है मुझे तो परी चाहिए। हुस्न को मेयार बना लेते हैं, अंधेरे में बिठाओ तो रोशनी हो जाए, बिजली का बिल बच जाए। सोचिए ज़रा, क्या सिर्फ हुसन आपकी बहू में अगर होगा तो आपको कैसी लगेगी? चांद का टुकड़ा आप ले भी आएंगे तो आप वो आपके साथ कैसे रहेगी? सोचिए। इसलिए हमेशा इस मामले में रियलिस्टिक होना चाहिए। रिश्तों के इंतखाब में हमारे कल्चर में बहुत कमी बेची है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वली कुल्लिन दराजात मिम्मा अमिलू, हर एक के दर्जे हैं उसके अमल के मुताबिक। वला युवफ्फियहुम आमालुहुम वला युवफ्फियहुम आमालहुम वहुम ला युस्लमून, और उनको पूरे पूरे उनके अमाल दिए जाएंगे और उन पर बिल्कुल भी जुल्म नहीं किया जाएगा। खुलासा क्या है पूरी बात का कि माँ बाप के साथ औलाद के जो रिश्ते होते हैं ना, ये रिश्ते दो रुखे होते हैं। आप दोनों को अल्लाह की जिम्मेदारी समझ के अगर निभाएंगे, आज अगर आप एक रिश्ते में हैं तो उस रिश्ते का हक अदा करने की कोशिश करें, दूसरी तरफ जाएंगे तो दूसरे भी होंगे। ना कोई बच्चा दुनिया में आते ही माँ बाप को सताता है। आप देखिए फितरत में हर बच्चे के अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप के को देखो। मैं कहती हूँ बदसूरत से बदसूरत भी माँ होगी ना तो बच्चा मचल के उसी के पास जाता है। लेकिन वही माँ कुछ अरसे के बाद फिर बच्चे के लिए नाकाबिले बर्दाश्त क्यों होती है? पूरी इस्लामिकली इसके ऊपर इंसान की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये बहुत ज़िम्मेदाराना बात है। शादी होनी नहीं चाहिए किसी लड़की या लड़के की जब तक उसको ए टू जी ये सारे स्टेप्स ना पता हो। शादी, उससे पहले की बातें, फिर अल्लाह ना करे हालात बिगड़े तो टूटते हुए घर को बचाना कैसे है? फिर भी ना बचे तो तलाक का तरीका क्या है? फिर बच्चों की परवरिश, तालीम, तरबियत, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती हैं। और आप देखिए कि सबसे कीमती दौलत आपके पास क्या है? औलाद है ना। और अगर एक बच्चा भी हमारा बिगड़ जाता है तो हमारे किस काम की है ये दुनिया? दिल का सुकून रूठ जाता है ना जब एक बच्चे का कोई एक गम आपको लग जाता है। सारी चीज़ों में से हमें जो पनाह मिलेगी ना वो अल्लाह के दीन में मिलेगी। हम सब जब अपने आप को अल्लाह की रहनुमाई के मुताबिक ढालते हैं ना तो आप देखते हैं कि हमारे अंदर कई फिर ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं। अपने बच्चों की तरबियत हम ऐसी करते हैं कि जैसी वाकई सहाबियात करती थी। और जिस तरह के बच्चों के मामलात उनके माँ बाप के साथ पहले दौर के लोगों के थे, आज फिर वैसे हो जाएंगे। शर्त एक ही है कि आज की माँ को अल्लाह की ये रहनुमाई नसीब हो जाए। और इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर जो जितना हिस्सा डालेगा वो करेगा। आप अमेरिका में जाएं, आप नॉर्वे में रहें, आप यूके में रहें, पाकिस्तान में जाएं, बेसिक्स कभी नहीं बदलती। बस दफ़ा ऐसे ऐसे वाक़यात सुनने में आते हैं कि इंसान की अक्ल गुम हो जाती है कि इस रिश्ते को इतना ज़्यादा हमने पर ख़राब कर दिया कि आज तो यकीन करें कि बाज़ लोग तो माँ बाप नहीं बनना चाहते। शादी हो जाती है, लोग कहते हैं हमें बच्चे ही नहीं चाहिए, अभी हम खेल रहे हैं, अभी हम खा रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हमें घर बनाना है, अभी हम जॉब कर रहे हैं। फितरत का रिश्ता है, फितरत की पुकार है, इसके ऊपर जितना लब्बाई करें। अब ये खुलासा हुआ, अगर अब आप में से कोई कोई प्रैक्टिकल चीज़ इन जितनी भी आज रैंडम फैमिली सिस्टम पे बात हुई करना चाहे, तो हम उसकी रोशनी में थोड़ी सी मज़ीद बात कर सकते हैं। ये तो स्क्रीन नहीं है मेरे पास, एक प्रेजेंटेशन जिसका मैंने रेफरेंस दिया, वो मैं ऐसे ही उसके जुमले आपको पढ़ के सुनाती हूँ, वरना आपको दिखा भी देते हैं लेकिन सब तक जाएगी नहीं, देख नहीं सकेंगे। तो इस प्रेजेंटेशन का नाम है हाउ सन और डॉटर थिंक्स ऑफ हिज और हर फादर एट डिफरेंट एजेस, यानी एक बच्चा या बच्ची अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ वक्तों में अपने बाप के बारे में क्या सोचता है। एट 4 ईयर्स, यानी जब बच्चा 4 साल का होता है तो वो क्या सोचता है, माई डैड इज़ ग्रेट, यानी उसको अपना बाप बहुत ग्रेट लगता है। एट एज ऑफ 6, 6 साल का बच्चा बाप के बारे में कहता है, माई डैडी नोज एवरी थिंग, कि मेरे अब्बू को बहुत आता है। एट एज ऑफ 10, 10 साल की उम्र में बच्चा कहता है, माई डैडी इज़ गुड बट ही इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड, अब्बू अच्छे हैं लेकिन इनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, वो जरा सीमा आ गया ना अब दिमाग में है। ही ऑल्सो नोज लिटल देन माई फादर्स डैडी, ये मेरे दोस्त के अब्बू से कम जानते हैं, कंपैरिजन आ गया, 10 साल की उम्र है ना, अब 12 साल की उम्र आ गई है। तो बच्चा क्या कहता है, माई डैडी वॉज नाइस टू मी वेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था तो अब्बू बड़े अच्छे होते थे, ये नहीं पता कि मैं बिगड़ गया हूँ। एट एज ऑफ 16, अब आ गई है मुश्किल उम्र 16 साल की, माई डैडी इज नॉट इन लाइन विद द करंट टाइम्स, मेरा अबू वक्त के तकाजे नहीं समझता, फ्रेंकली ही डज नॉट नो एनी थिंग, सीधी सी बात है उसको कुछ समझ ही नहीं आती। ये 16 साल की बिगड़ी हुई बच्ची है। 18 साल की उम्र अब हो गई 18, माई डैडी इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्रैंकी एंड अनरीजनेबल, कि ये दिन ब दिन मेरे अब्बू जो हैं ये क्रैंकी क्यों होते जा रहे हैं और बर्दाश्त के काबिल नहीं रहे, अंडरस्टैंड नहीं करते चीज़ों को। एट द एज ऑफ 20, 20 साल का बच्चा अपने माँ बाप के बारे में क्या सोचता है, ओह इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट टू टॉलरेट डैडी, वॉन्डर हाउ मदर पुट्स अप विद हिम, कि ये तो मुश्किल होता जा रहा है कि अब अब्बू को बर्दाश्त करें, अम्मी ने पता नहीं इनके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारी है, अम्मियाँ भी खुश हो गई हैं। एट एज ऑफ 25, 25 साल की उम्र में, डैडी इज ऑब्जेक्टिंग टू एवरी थिंग, डोंट नो वेन विल ही अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, कहते हैं अब्बू हर चीज़ पे ऑब्जेक्ट करते हैं, इतराज़ करते हैं, पता नहीं ये दुनिया को कब समझेंगे। अब एट द एज ऑफ 30, 30 के हो गए हैं अब, इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट टू मैनेज माई सन, आई यूज टू बी सो स्केर्ड ऑफ माई डैड वेन आई वॉज यंग, अब अपना बच्चा हो गया, बड़ा प्यारा बच्चा सा तस्वीर में मेरे सामने है। 30 साल तक अपना बच्चा होता है तो कहते हैं मेरे लिए तो एक बच्चे ही संभालना बड़ा मुश्किल है, मैं तो अपने अबू से बहुत डरता था, मेरा बच्चा नहीं मुझसे डरता। एट एज ऑफ 40, डैडी ब्रॉट मी अप विद सो मच डिसिप्लिन, अब अपने बाप की कदर आ रही है ना, 40 का हाँ 40, क्या कहते हैं, मेरे अबू ने तो मुझे बड़े डिसिप्लिन से पाला था, आई वॉन्डर हाउ ही मैनेज टू हैंडल द यंगर जनरेशन, मुझे यकीन है कि वो आने वाली नस्लों को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर सकता है, यानी मतलब ये कि मेरे से बच्चा संभल नहीं रहा। और एट द एज ऑफ 45, आई एम बेफल्ड एज टू हाउ माई डैडी ब्रॉट अस अप, अब कदर आ रही है कि अब यकीन हो गया कि मेरे अब्बू ने हमें बड़ा अच्छा पाला था। एट एज ऑफ 50, माई डैडी फेस सो मैनी हार्डशिप्स टू ब्रिंग अस अप, वी वर 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर, आई एम अनएबल टू मैनेज अ सिंगल चाइल्ड, कि अब्बू ने बड़ी मुश्किलों से हमें पाला, हम 4 भाई बहन थे लेकिन मेरे से तो एक बच्चा ही नहीं सीखा। और एट द एज ऑफ 55, माई डैडी वॉज सो फार साइटेड एंड प्लान सो मैनी थिंग्स फॉर अस, इवन एट दिस ओल्ड एज ही इज एबल टू कंट्रोल थिंग्स, ही इज वन ऑफ हिज काइंड एंड यूनिक, कि मेरा अबू बहुत दूर हंसता, बहुत दूर की बातें सोचते थे, प्लान थे, वक्त से पहले चीज़ों को करते थे, और इस एज में भी वो चीज़ों को बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं। लेकिन एट द एज ऑफ 60, माई डैडी वाज ग्रेट, अब इस वॉज में बदल गई है। पहला जुमला क्या था बच्चे का 4 साल की उम्र में? यही था, माई डैडी इज ग्रेट। तो 60 में जाके बात समझ आई कि ही वॉज ग्रेट, क्योंकि वो अब रहा नहीं।